आज हम थोड़ा जानेंगे कि स्ट्रेस है क्या चीज। शायद वो टॉपिक अभी कवर नहीं किया गया है। थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद क्या स्ट्रेस कैसे हमारी बॉडी पर कैसे असर करती है और कैसे भिन्न भिन्न बीमारियां हमें हो जाती हैं स्ट्रेस के द्वारा। देखिए, आज के जमाने में, आज के युग में रोज चेंजेस होते रहते हैं। फिजिकल चेंजेस भी होते हैं, केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, मेंटल चेंजेस भी हो रहे हैं, सोशल चेंजेस भी हो रहे हैं। उन चेंजेस को हमारी बॉडी अडॉप्ट करती है, उनको वो हमारे सामने चैलेंज की तरह से आते हैं। तो जो वो चेंजेस आ रहे हैं, चेंजेस कहो, रिएक्शंस कहो, फिजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, सोशल रिएक्शंस, है ना, इमोशनल रिएक्शंस, जो भी हो रही हैं संसार में, हमारे आसपास के वातावरण, हमारे अंदर भी हो रही है और बाहर के वातावरण में भी हो रही है, तो वो जो रिएक्शंस होती रहती हैं वो हमारे सामने चैलेंज की तरह आते रहते हैं। अगर वो चैलेंज हम फेस कर सकते हैं, कुछ लिमिट तक हम फेस कर सकते हैं, और वो कुछ चैलेंज कुछ हद तक हमें हेल्प भी करते हैं कई बार, तो वो तो है अच्छी स्ट्रेस कहें, यू स्ट्रेस कहें। और जब हमारी लिमिट के बाहर हो जाते हैं तो वो हमारे लिए स्ट्रेस बन जाते हैं, डिस्ट्रेस बन जाते हैं। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है? इट इज ए रिएक्शन, इट इज ए रिएक्शन टू द चेंजेस, और इट इज ए सॉर्ट ऑफ ए, और ये स्ट्रेस भी, आज की स्ट्रेस जो है वो भी कई तरह की स्ट्रेस हो जाती है वैसे, हालांकि बहुत डिफाइंड नहीं कहेंगे। फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकती है, मेंटल स्ट्रेस भी हो सकती है, और इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकती है। फिजिकल स्ट्रेस जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए कौन कौन, जैसे फिजिकल स्ट्रेस कैसे होती है, जैसे मौसम का बदलना, बहुत गर्मी हो जाना, बहुत ठंड हो जाना, है ना, बहुत ज्यादा एग्जर्शन करना पड़ना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाना, तो ये एक फिजिकल स्ट्रेस हो जाती है ना? एक मेंटल स्ट्रेस भी हो सकती है। मेंटल स्ट्रेस कैसे होती है, जैसे कि हम, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा, घर में किसकी डेथ हो गई, हमारे ऊपर कोई ऐसी, किसी ने हमें बहुत, जैसे बाबा ने कहा ना इस बार मुरली में कहा कि हमें बहुत कोई हमें नाराज कर रहा है, सोचने इकट्ठे नाराज कर रहे हैं ना, तो मेंटल स्ट्रेस हो गई है ना। या कोई हमारा बच्चा है जो कि हमारा कहना नहीं मान रहा है, या हमारी घर में हस्बैंड वाइफ युगल के साथ है ना हमारी ठीक नहीं बन रही है, किसी कारणवश किसी दोस्त से हमारी ठीक नहीं बन पा रही है, तो वो हमारे साथ वातावरण में है, जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमारी ठीक नहीं चल पा रही है, तो मेंटल स्ट्रेस हो गई। तो अभी हम देखेंगे जरा, सोशल स्ट्रेस भी हो सकती है, जैसे इकोनॉमिक लेवल पे हो सकती है, आपका सोशल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट जो ग्रुप है वो आपके साथ ठीक नहीं है, आपको ठीक इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती है, आप अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं। जो आपको मान लीजिए कोई खुशी भी, अगर ये भी खुशी भी शेयर करना, अगर खुशी भी शेयर ना करो वो भी हमारे दुख बन जाती है। आपको कोई बात बहुत अच्छी बात आपके साथ हो गई, आप कहीं गए और आपको बहुत अच्छा वहां कुछ मिला या कुछ मतलब हो गया, और आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी से शेयर करूं, आपको लगता है शायद इसका कोई मजाक ही उड़ाना शुरू कर दे मैं जो कह रहा हूं, है ना, तो आप अपने अंदर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी आपके लिए क्या बन गई, स्ट्रेस बन गई, है ना। तो आज जो डिफाइन की है, देखो 19वीं सेंचुरी जो थी ना, वो 19वीं सेंचुरी वो थी बायो, उसमें था बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ। उसमें हम कहते थे कि एक बायोमेडिकल का मतलब था कि एक तो आदमी है जिसके अंदर जीन्स हैं, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल्स, उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर है, उसकी बॉडीली स्ट्रक्चर है, कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, और आदमी जो उससे इफेक्ट हो जाता है, बीमार हो जाता है, बायोमेडिकल। तो ये मॉडल ऑफ हेल्थ, इसमें आदमी विक्टिम की तरह से था, मतलब एक आदमी, मतलब आदमी विक्टिम था कि उसके ऊपर उसके स्ट्रक्चर ने खराब कर दिया, उसके जीन्स ने खराबी कर दी, या उसके वायरस बैक्टीरिया ने उसके ऊपर हमला कर दिया। तो उसमें आदमी को, मतलब हम समझते कि बस डॉक्टर उसके पास जाए, डॉक्टर दवाई देगा और वो ठीक हो जाएगा या उसको ऑपरेशन कर देगा। किंतु फिर 20वीं सेंचुरी जैसे आई, जो वो भी बीत गई, तो उसमें आया बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ। तो उसमें था कि बायो तो है, ठीक है, जीन्स हैं, स्ट्रक्चर है बॉडी की, बचपन से ही हार्ट में छेक है, बचपन से हार्ट की दीवारें मोटी हैं, वट एवर, या डायबिटीज के जीन है या जो भी है उसके अंदर, या उसका हाथ खराब है बचपन से ही, वो ठीक है, या उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया है, फंगस है बाहर बहुत सारी, फिर उसने कहा नहीं खाली ये काफी नहीं है, साइको आदमी की साइकोलॉजी अंदर से कैसी है, उसका मन अंदर से कैसा है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, उसकी इमोशंस क्या हैं, उसकी मेमोरीज, पास्ट मेमोरीज कैसी हैं जिसके बेस पे वो कार्य कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हार्ट डिजीज का। मैं तो कोई भी, सॉरी हार्ट डिजीज तो मेरे मुंह से बार बार निकल जाएगी वैसे, क्योंकि ऑब्सेस्ड है ना, ऑब्सेस्ड विद हार्ट डिजीज है ना। तो एक फिर ये साइकोलॉजिकल मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, फिर सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में ये कहा गया कि सोशल फैक्टर्स जो हैं उसमें जैसे हमारी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है हमारा, है ना, सोशल सपोर्ट ग्रुप क्या है, हमारा एथनिसिटी क्या है, हमारे मत कौन सा धर्म है, तो इस तरह से। तो बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, तो ये मॉडल ऑफ हेल्थ मतलब था इसमें जो हमने तीनों बातें कही गई और इसके जो है तीनों का असर हमारी हमें बीमारी पैदा करता है। और इसमें हम खाली, इसमें आदमी विक्टिम नहीं है, इसमें ह्यूमन बींग विक्टिम नहीं, इसमें जो है वी आर रेस्पॉन्सिबल। मैं क्या सोचता हूं इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं, कोई और जिम्मेवार नहीं है। मेरी भावना कैसी है इसके लिए मैं जिम्मेवार हूं। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसी भी मुझे मिल गई, बॉडी मुझे जैसी भी मिल गई, जैसा मर्जी वातावरण मिला, सोशल वातावरण मिला या फिजिकल वातावरण मिला, किंतु उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं, मुझे कैसे अडॉप्ट करना चाहिए उसके अनुसार। तो इसमें आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है शेयर करना। तो किंतु आज का डॉक्टर, आज का फिजिशियन, आज भी आज का सर्जन किससे ऑक्यूपाइड है, 19वीं सेंचुरी में रहता है, वो समझता है कि बीमारी जो है किससे होती है, बैक्टीरिया वायरस से होती है, या स्ट्रक्चर से होती है, जीन से होती है, मन के द्वारा बीमारी नहीं हो सकती। हाँ, फिजिकल आपको कुछ बुखार हो गया तो बुखार की वजह से आपका मन खराब हो सकता है, उसको डिप्रेशन हो सकता है, आपको कैंसर हो जाए तो उससे आपको डिप्रेशन हो सकता है, किंतु मन से कैंसर नहीं हो सकता है। जबकि मन के थिंकिंग से कैंसर हो सकता है, मन की थिंकिंग से हार्ट डिजीज हो सकती है, मन की थिंकिंग से ब्लड प्रेशर हो सकता है, मन की थिंकिंग से डायबिटीज हो सकती है। तो आज भी मेरे 95% मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स क्या किसमें रहते हैं, 19वीं सेंचुरी में रहते हैं। ठीक है, बहुत थोड़े से डॉक्टर्स, बहुत थोड़े से फिजिशियंस, सिर्फ मैं समझता 5% फिजिशियंस ही आज भी 20वीं सेंचुरी में है। ठीक है, और मैं समझता हूं शायद 1% डॉक्टर्स भी 21वीं सेंचुरी में भी नहीं पहुंचे, हालांकि 2001 बीतने वाला है। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि हमारा कैसे हमारे ऊपर स्ट्रेस का इफेक्ट आता है। तो हम चलेंगे 19वीं सेंचुरी से 21वीं सेंचुरी की तरफ। देखिए, एक तो हमें मन, ये दिमाग हमें मिला है, ये दिमाग कैसे कंट्रोल कर रहा है बॉडी को, इसके लिए दो चीजें हैं, एक तो है न्यूरल कंट्रोल, एक है ह्यूमरल कंट्रोल, मतलब हार्मोनल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल के दो सिस्टम हैं, हमारा जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, शायद इसके लिए थोड़ा पढ़ाया, एनाटॉमी पढ़ाई है, एनाटॉमी हैज बीन कवर्ड। ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और हाइपोथैलेमस से और इसके जो आसपास के न्यूक्लियस होते हैं ब्रेन में, कहीं कहते कहीं आत्मा का निवास स्थान है, बाद में आएंगे, वो 21वीं सेंचुरी की बात है, किंतु अभी हम पहले 19th में चले। तो हाइपोथैलेमस से 19th और 20th में, यहां से दो, समझिए, ये दो वायर्स निकलती हैं, और हमारे पूरे के पूरे, जैसे अगर हम यहां से देखें ऊपर से और नीचे तक हमारी रीढ़ की हड्डी है, और हर लेवल पे हमारा दो सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक सिस्टम, एक पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। आप इसको कह सकते हैं, पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को हरी तार कह सकते हैं और सिंपैथेटिक सिस्टम को लाल तार कह सकते हैं। ठीक है, तो हर लेवल पे लाल तार है और एक हरी तार है, मतलब एक कह सकते हैं एक हीटिंग सिस्टम है और एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। तो हर लेवल पे है, चाहे आंखों के लेवल पे, चाहे हमारी पहली नर्व है नाक की है, आंखों की नर्व सेकंड नर्व है, थर्ड फोर्थ सिक्स नर्व है वो हमारी आंखों के चलाने फिराने की नर्व है, पांचवी नर्व हमारे फेस की है, ऐसे मतलब हर चीज के लिए, छठी नर्व है, सातवीं नर्व है, फिर नीचे रीढ़ की हड्डी, पूरी नीचे तक हर चीज की सप्लाई है। तो हर, चाहे वो बाहर का ऑर्गन हो चाहे अंदर का ऑर्गन हो, चाहे हार्ट हो, लिवर हो, पेट हो, स्प्लीन हो, कोई भी ऑर्गन, किडनी हो, तो हर ऑर्गन पे उसका असर होता है, गर्म तार का और ठंडी तार का। ठीक है, तो इस गर्म और ठंडी तार के बैलेंस से ही हमारी गाड़ी चलती है, इसे हम कहते हैं न्यूरल कंट्रोल। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या करता है, गर्म करता है, मतलब एकदम से हमें हीटअप करता है, उसके लिए तैयार करता है, एक्सेलरेशन कर सकते हैं। ठीक बात है। और जो हमारा जो पैरासिंपैथिक सिस्टम है, कूलिंग डाउन, कूल डाउन करता है। ठीक है, उसको मतलब इसे एक तरह से डेसेलरेशन कर देता है। तो इन दोनों का बैलेंस रहे, अगर दोनों जरूरी है, कई सोचते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम होना ही नहीं चाहिए, उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। ठीक है, और पैरासिंपैथेटिक, इसका बैलेंस ही हमें दिन में दिन पर दिन चलाता है। किंतु अगर ये सिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा हो जाए तो इसको ही हम कहते हैं स्ट्रेस बढ़ गई, है ना, है ना। ठीक है, अगर पैरासिंपैथेटिक सिस्टम ज्यादा हो जाए तो हम बहुत ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सिस्टम, दूसरा सिस्टम है, इसके मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, बिकॉज मैं समझता हूं सभी आप मेडिकल लोग हैं तो डिटेल में आप जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है हमारा ये पिट्यूटरी से कनेक्शन है। पिट्यूटरी हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है, इससे हमारे डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं। वो हार्मोन्स भी एक्चुअली यहां से ही निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलते हैं। वो हार्मोन्स पहले यहां पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करते हैं और उसके बाद पिट्यूटरी डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करती है। नीचे थायराइड ग्लैंड है हमारे यहां, एड्रिनल्स हैं, ठीक है ना, और डिफरेंट ग्लैंड्स हैं। वो हमारे ह्यूमरल सिस्टम कहलाता है या हार्मोनल सिस्टम कहलाता है, वो हमारी सारी बॉडी को वैसे रेगुलेट करता है। किंतु ये हार्मोन्स भी, इसके अलावा एक तो ये न्यूरल सिस्टम हो गया, एक हार्मोनल सिस्टम, तीसरा सिस्टम एक और है, वो है न्यूरोपेप्टाइड सिस्टम। न्यूरोपेप्टाइड सिस्टम एक्चुअली क्या है, इन दोनों को भी कवर करता है। वो क्या करता है कि जैसे ही हमारे मन में कोई संकल्प आते हैं, कोई भी थॉट्स आते हैं, हाइपोथैलेमस में वो थॉट्स केमिकल मॉलिक्यूल में, प्रोटीन के मॉलिक्यूल में चेंज हो जाते हैं, उनको हम न्यूरोपेप्टाइड्स कहते हैं। और ये न्यूरोपेप्टाइड्स एक तरह के मैसेजेस हैं फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, फ्रॉम द ब्रेन टू ईच सेल ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में लगभग 60 से 70 हजार करोड़ सेल्स होती है, और हर सेल के ऊपर इसके लिए रिसेप्टर्स बने हुए हैं, रिसीविंग स्टेशंस हैं। तो जैसे ही कोई मैसेज आपने थॉट किया, वो थॉट से केमिकल बना और पूरी की पूरी बॉडी में हर अंग पे चला गया, हर सेल पे चला गया, और वो सेल उसके असर के बिना बच नहीं सकती। उस सेल को, उसको उस ऑर्डर को मानना ही पड़ता है। मान लीजिए आपने कोई संकल्प किया, कैसा भी अच्छा किया तो अच्छा असर आया, अच्छी की बात नहीं, नेगेटिव की पहले लेते हैं, तो नेगेटिव कोई भी संकल्प किया उसका असर उस सेल पे होगा ही होगा। आप कुछ मर्जी कर लीजिए, आप उससे बच नहीं सकते। हमने कहा सर सोचा ही तो है, खाली सोचा नहीं है, किंतु उसका असर आ चुका और एक्यूमुलेट धीरे धीरे, अगर बार बार सोचते रहेंगे तो उसका असर एक्यूमुलेट होता जाएगा, नेगेटिव असर एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, और उसी अनुसार फिर हमारी सेल्स एक्चुअली कहते हैं, आज तो हम कहते हैं ये हार्मोन्स की जो बात की ना हमने, हम कहते हैं कि हार्मोन्स एक्चुअली हमारे कोई एक कुछ ग्लैंड से निकलते हैं, नहीं, आज ये कहते हैं ईच सेल ऑफ द बॉडी इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। हर बॉडी की सेल से हार्मोन निकलते हैं, हर बॉडी की सेल से हार्मोन निकलते हैं, और हर बॉडी की सेल में माइंड है। माइंड ऐसा नहीं कि माइंड यहां बैठा हुआ है, ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज माइंड, है ना, ईच सेल ऑफ द बॉडी हैज माइंड। ठीक है, तो मतलब आज जो हम कहते हैं, ये तो कहते हैं ना कि भी हमारा यहां से ऊपर से कनेक्शन हो रहा है, किंतु हर, ये तो ऊपर से कनेक्शन तो है ही, किंतु हर सेल में भी माइंड है। वो हम आगे थोड़ा गहराई में जाएंगे, थोड़ा और देखेंगे। तो ये बात क्लियर होगी सभी को कि ऊपर से बड़ा स्ट्रांग कंट्रोल है, कंट्रोलर यहां बैठा है ना, किंतु वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, थ्रू न्यूरल सिस्टम, ईच सेल ऑफ द बॉडी इज बीइंग कंट्रोल्ड थ्रू ह्यूमरल सिस्टम, जो कि ह्यूमरल हर बॉडी के हर कोने कोने में जा रहा है, और थ्रू द न्यूरोपेप्टाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम स्ट्रेस को बहुत सिंपल सी बातों में, भाषा में कहें, तो स्ट्रेस जो है इज इक्वल टू प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। स्ट्रेस क्या है, प्रेशर्स डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ। तो प्रेशर दो तरह के हो सकते हैं, एक है, तो प्रेशर जो है इंटरनल प्रेशर हो सकते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर हो सकते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वातावरण का प्रेशर है, मेरे आसपास काम करने वाले हैं, है ना, और मतलब और भी कुछ मौसम है, ट्रैफिक है, हमारे घर के पास बहुत सारा शोर हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। और इंटरनल प्रेशर मेरे अपने अंदर की बातें हैं, मेरी आदत है बहुत जल्दबाजी करने की आदत है, बहुत जल्दी कोई बात में चिंता हो जाती है मुझे, बहुत सारी बात है मुझे मतलब गुस्सा आ जाता है, थोड़ी बात में उदास, कुछ मुझे कुछ मेरी बात ना कहे तो मुझे उदासी आ जाती है ना। तो ये मेरे अपने अंदर के कारण है। अब देखिए बाहर के कारण भी कई बार मॉडिफाई नहीं कर सकते, कर सकते हैं बाहर के कारण? अब मार बहुत ठंडी पड़ रही है तो मैं ठंडी को बदल सकता हूं क्या? बाहर बहुत पॉल्यूशन है, बहुत ट्रैफिक चल रहा है तो मैं बदल सकता हूं? नहीं बदल सकता ना। और इंटरनल भी कई बार चेंज करने बड़े मुश्किल होते हैं। इंटरनल आदत है आपकी जल्दबाजी करने की, उसको चेंज करना, हाँ चेंज कर सकते हैं। अभी हमने अभी वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सेक्रेटरी में प्रेजेंट करके आए, हम डाटा प्रेजेंट करके आए, तो वी हैव शोन कि अभी कैसे टाइप ए पर्सनैलिटी को मॉडिफाई किया जा सकता है थ्रू राजयोग। एंग्जाइटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, हालांकि कहते हैं कि नहीं मॉडिफाई कर सकते। अभी यस्टरडे आई वाज शेयरिंग विद डॉक्टर अवधेश शर्मा कि मतलब कैसे हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं थ्रू जस्ट पॉजिटिव यू नो इमेजिनेशन और पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ साइकोथेरेपी टू द माइंड, तो वो चेंज हो जाता है। किंतु अभी तक साइंस नहीं मानती थी, किंतु आप जब उसमें प्रेजेंट किया तो लोगों ने इसको माना, थोड़ा सा लोगों ने मानना शुरू किया। तो इसको मॉडिफाई करना कोई मुश्किल होता है ना, एकदम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। मेरे को आदत है डर लगने की, किसी कोई ऐसा हुआ तो एकदम डर लगा, क्योंकि वो पहले के बने बनाए बातें हैं। डॉक्टर गिरीश पटेल आपको उस बारे में बहुत डिटेल में समझाएंगे क्यों हमें पिछली कई बातों से डर लगता है, किसी को पानी से डर लगता है, किसी को किसी और बात से डर लगता है, तो वो डर लगता ही है ना। तो वो बातें वो मतलब हम कहीं बदल नहीं सकते, किंतु एक चीज हमारे हाथ में इनर स्ट्रेंथ, अंदर की बात, अंदर की नीचे वाली बात। जब भी ये रेशो ऑन करो वही वाली स्ट्रेंथ, जब भी ये रेशो प्रेशर डिवाइडेड बाय इनर स्ट्रेंथ जब भी एक से अधिक हो जाता है तो वो हमारे लिए सिचुएशन स्ट्रेसफुल हो जाती है, और जब भी रेशो एक से कम रहता है तो वो सिचुएशन हमारे लिए स्ट्रेसफुल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर हम इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा लें, एक तो प्रेशर तो मैंने कहा मॉडिफाइबल, मे नॉट बी मॉडिफाइबल, मे बी मॉडिफाइबल, मे नॉट बी मॉडिफाइबल, किंतु इफ यू कैन इंक्रीज योर इनर स्ट्रेंथ, जो कि हमारे हाथ में है, एम्पावर करना खुद को, बढ़ा लेना, तो ये हमें इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। नेक्स्ट स्लाइड। अब स्ट्रेस से होता क्या है, व्हाई वी टॉक अबाउट स्ट्रेस, कि स्ट्रेस से क्या होता है और हम योगा क्यों प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कि स्ट्रेस से क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, दीज आर प्रूव्ड थिंग्स, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म हमारा बढ़ जाता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, उससे हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, आर्टरीज जो है हमारी वो सिकुड़ जाती है, सारी बॉडी, हार्ट की खाली बात नहीं है, बॉडी की हर पार्ट की आर्टरीज, चाहे ब्रेन की आर्टरीज हो, चाहे हमारी हार्ट की आर्टरीज हो, चाहे हमारी किडनी की आर्टरीज हो, चाहे हमारे पेट की आर्टरीज हो, किसी भी बॉडी की किसी भी अंग की आर्टरीज हमारी सिकुड़ जाती है, स्किन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। स्किन रेजिस्टेंस इज अ मेजर ऑफ एंजाइटी, एक्चुअली जितनी हमारी एंजाइटी ज्यादा होती है उतना हमारी स्किन रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। जैसे अगर कोई एंजाइटी वाला आदमी होता है ना, उसको अगर कोई बाई चांस ऐसे छू भी दे ना, उसको एकदम उछल के पड़ेगा, और योगी होगा ना तो क्या करेगा वो, उसको आप जब बाहर ढोल बजते रहे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, कोई उसको कुछ मर्जी करे उसको फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज बीन सीन, हमने अपने जो एक बाबा का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हमने देखा कि जो GSR बढ़ जाता है 3-4 गुना बढ़ जाता है थ्रू मेडिटेशन, और एंजाइटी जब शुरू शुरू में आते हैं तो इनका स्किन GSR बहुत कम होता है। तो GSR जो है जब इससे स्ट्रेस से कम हो जाता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की मोटिलिटी इससे कम, इससे बढ़ जाती है। वैसे एक्चुअली दोनों में दोनों चीजें हो सकती हैं, खाली ऐसी बात नहीं, दोनों बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, वो हम डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। और ब्रेन की अल्फा वेव्स कम हो जाती, शांति किरणें जो ब्रेन से हमारी शांति किरणें निकल रही है वो कम हो जाती है। एक और चीज है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी भी हमारी इससे कम हो जाती है, जो कि हमारे हार्ट के लिए एक इम्यूनिटी है। तो ये जो चीजें इससे हो जाती है, और योगा का बिल्कुल इससे योगा से बिल्कुल अपोजिट होता है। तो स्ट्रेस की जो एंटीडोट है वो योगा है, वो आप बाद में जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ एक मिनट दोबारा दे। तो स्ट्रेस से क्या होता है, बेसिकली सिंपैथेटिक सिस्टम जो है हमारा डोमिनेंट हो जाता है, वो लाल तार जो बताई ना आपको, लाल तार हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है और फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू हो जाते हैं। नेक्स्ट, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस हो रही है जिसमें आज खाली हार्ट की बात नहीं है ये ऊपर, किंतु हर चीज में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लंग सिस्टम, ब्लड, स्लीप डिसऑर्डर्स, इस पे आज जो हमारा एक नेशनल लंग ब्लड एंड हार्ट इंस्टीट्यूट है NHLBI यूएसए में, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जिसने इस पे डिसाइड किया कि हम हर चीज में बिहेवियरल फैक्टर्स को स्टडी करें कि बिहेवियर कैसे हार्ट कैसे डिफरेंट डिजीज को पैदा करता है। तो उन्होंने देखा है बहुत सारी बातें जिसके द्वारा ये, उसमें मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने दी है, एबिलिटी टू कोप इफेक्टिवली विद स्ट्रेस। ये हमें कैसे जीना चाहे, कैसे हमें अपने आप को एजुकेट कर लें, कैसे अपने समझ लें कि कैसे हम स्ट्रेस को, स्ट्रेस तो जीवन का एक अंग है किंतु उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, किंतु मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, ये बिहेवियर वेरिएबल्स हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स में स्मोकिंग, फिजिकल एक्टिविटी, एडवर्स डाइट, ओबेसिटी, कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में साइकोसोशल ट्रेट्स हैं, एंगर, हॉस्टिलिटी, डिप्रेशन, है ना, पर्सनैलिटी टाइप ए और टाइप बी, फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सिवनेस टू स्ट्रेस, और सोशल फैक्टर, तीन फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सोशल एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, लैक ऑफ सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट, जॉब स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, एथनिसिटी। तो ये जो तीन तरह के फैक्टर्स हैं, बिहेवियरल फैक्टर्स, जो कि हमको हमें हेल्दी बना सकते हैं या बीमार कर सकते हैं। नेक्स्ट, और बहुत सारे एविडेंस हम मिलते जा रहे हैं कि इनसे हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, हार्ट अटैक, कार्डियक स्ट्रक्चर बदल जाती है, हार्ट के अरिथमियाज हो जाते हैं, ये डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखने में आया है कि सोशल फैक्टर्स, स्पेशली जैसे आइसोलेशन, एक अकेलेपन की फीलिंग, जैसे मैं बात कर रहा था कि हम अपनी बात को शेयर नहीं कर पाते हैं दूसरों के साथ, तो जो लोग, बाकी सब फैक्टर्स निकाल दीजिए, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, स्मोकिंग, सब निकाल दीजिए, डायबिटीज सब फैक्टर्स, बाकी कोलेस्ट्रॉल को भी निकाल दीजिए, किंतु सिर्फ जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, हमें शायद बहुत थोड़े से लोग प्यार करते हैं, प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं, तो ऐसे लोगों में चार गुना अधिक डेथ्स होती हैं हार्ट अटैक से, चार गुना अधिक, बाकी सब चीज निकाल दी एक तरफ, ठीक है। तो इसके इसमें देखिए, इफेक्ट ऑफ सोशल सपोर्ट एंड लव आर ग्रेटर देन बायोमेडिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। मतलब अगर आप सोशल सपोर्ट है, आप महसूस करते हैं मेरे साथ सब हैं, सब तो हो नहीं सकते है ना, मेरे साथ सब हैं, अगर ये फीलिंग है, वो आप सभी ज्ञानी है इसलिए समझ सकते हैं सब कैसे होंगे साथ में, और प्यार है, मुझे सब प्यार करते हैं, मैं सबको प्यार करता हूं, तो उसका असर किसी भी दवाई से, किसी भी फिजियोलॉजिकल फैक्टर से अधिक है। और एक स्टडी देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग समवन हुम वी ट्रस्ट टू शेयर अवर फीलिंग्स। आपके मन में कोई बात बहुत खुशी की बात है, नहीं शेयर कर पा रहे हैं, है ना, या बहुत दुख की बात है, शेयर नहीं कर पा रहे, तो उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके पास ऐसा आदमी कोई है जिससे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर अपना शेयर कर सकते हैं। तो देखने में आया, दोज विद पुअर इमोशनल सपोर्ट, इसे कहते हैं इमोशनल सपोर्ट, कि अपनी बात कह देना दूसरे से, अपना दिल खोल लेना दूसरे से, इसको कहते हैं इमोशनल सपोर्ट। तो ये जो है, जिसके पास इमोशनल सपोर्ट नहीं होती है, वो तीन गुना अधिक, छह महीने के अंदर अंदर मर जाते हैं हार्ट डिजीज से, ठीक है, तीन गुना अधिक। ऐसे एक बड़ी स्टडी में देखा गया, इसमें 35,000 लोग थे, पीपल हु कंप्लेन ऑफ सोशल आइसोलेशन, लैक ऑफ लव एंड इनसिक्योरिटी, डबल द मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट स्लाइड। ऐसे जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं, ऐसे इस स्टडी में 1305 लोग लिए गए थे, ये बहुत अच्छी जर्नल है सर्कुलेशन, इसमें 1305 लोग लिए गए थे जिनको पहले हार्ट डिजीज नहीं थी, उनको एक एंगर कंटेंट स्केल दिया गया था और उनको 7 साल फॉलो किया गया, उसमें 110 लोगों को हार्ट की बीमारी पैदा हो गई। और ये देखने में आया कि जिनको कम एंगर था, उसमें तीन तरह के पेशेंट्स बनाए गए, एक कम एंगर वाले, बीच वाला एंगर और अधिक एंगर, इसमें बहुत सारी क्लासेस आपकी होने वाली हैं। तो आप देखिए कि जिनको कम एंगर था उनको सिर्फ 3 लोगों को हार्ट अटैक्स हुए, जिनको बीच का एंगर था उनके 21 लोगों को हार्ट अटैक हुए, और जिनको अधिक एंगर था उनको 25 लोगों को हार्ट अटैक, 26 लोगों को हार्ट अटैक हुए। तो जिनको कम एंगर है वो हाथ उठाएं जरा, जिनको बीच का एंगर है वो हाथ उठाएं, जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है वो आदत है। तो जिनको गुस्सा ज्यादा आता है उनको अधिक हार्ट अटैक्स होते हैं, ठीक है। खाली हार्ट अटैक्स की बात नहीं है, हर बीमारी अधिक होती है, ठीक है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर्स, एवरीथिंग। ऐसे वरी के ऊपर स्टडी की गई तो जो वरी अधिक करते हैं उनको 2 गुना अधिक हार्ट अटैक्स हुए। नेक्स्ट लेक्चर। साथ वालों को भी हो जाते हैं। तो जैसे स्मोकिंग का होता है ना, पैसिव, एक एक्टिव स्मोकिंग, एक पैसिव स्मोकिंग, ऐसे एक एक्टिव एंगर होता है, एक पैसिव एंगर होता है ना, इफेक्ट बराबर होता है लगभग। अब देखेंगे बीमारी होती कैसे है, ये एक्चुअली हर बीमारी को अप्लाई करता है। मैंने कहा थोड़ा सा इसको मत देखना, सीएडी को मत देखना, बाकी हर चीज पे अप्लाई करता है। हर बीमारी जो है 4 फेज में पैदा होती है, किंतु हम डॉक्टर लोग सिर्फ एक ही फेज को देखते हैं और इसलिए बीमारी बार बार होती रहती है। तो हम देखें कैसे बीमारी होती है। हर बीमारी की पहले साइकिक फेज होती है। साइकिक फेज में क्या होता है, इसका मैकेनिज्म हम देखने के, इफेक्ट कैसे होता है बॉडी पर, बॉडी के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव। देखिए रिपीटेटिव वर्ड मिसिंग है, एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव। एक बार एक्सेसिव, ट्रॉमा से कुछ नहीं होता है, एक्सेसिव एंड रिपीटेटिव, अधिक और बार बार, एक्सेसिव एंड साइकिक रिपीटिव, साइकिक ट्रॉमा। तो इससे क्या होता है, इसमें बाकी बहुत सारी फीलिंग और भी आगे, लैक ऑफ लव, आप बार बार महसूस कर रहे हैं, इनसिक्योर अपने आप को बार बार महसूस कर रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, बदला लेने की भावना है, मुझे बदला लेना ही है, मुझे बदल के नहीं दिखाना है, मुझे उससे बदला लेना है ना। और जो देखो बाबा की श्रीमत जो है ना, उसके खिलाफ जो कर रहे हैं ना, वो सारी बातें इसी में आती है, दर्द है ना, जॉब स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एसिटाइल कोलिन, शुरू में साइकिक फेज में क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एक हार्मोन है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट जो हार्मोन बढ़ता है वो एसिटाइल कोलिन बढ़ता है, और साथ साथ कैटाकोलामिन भी थोड़ा थोड़ा बढ़ना शुरू करते हैं। ये जो मैंने हार्मोनल कंट्रोल की बात कर रहे थे ना, हम लोग हार्मोनल कंट्रोल की बात कर रहे थे, तो पहले ये जो है हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम, और ये सिंपैथेटिक सिस्टम के मतलब ये अलग बात है, वो अलग बात है, किंतु ये हमारा साथ साथ बढ़ना शुरू करता है एसिटाइल कोलिन और कैटाकोलामिन, पर ज्यादा ये और कम ये। तो इससे हमारा जो ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाता है। देखिए जब भी आपको कोई चीज बार बार, आपको मान लीजिए कोई आदमी है बार बार आपको देखता है और गाली देता है, बार बार देखता है आपकी तरफ मुंह बना के चला जाता है, तो आपके मन में क्या होगा, आपके मन में आपका ब्रेन हाइपर एक्टिव हो जाएगा। सोचिए पता नहीं आदमी मेरे से ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, मैंने तो कुछ किया नहीं इसको, तो मेरे साथ ऐसा क्यों करता है बार बार, मेरे मन में इसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, फिर भी ऐसे बिहेव मुझसे कर रहा है, तो आप सोचेंगे बार बार, तो आपका ब्रेन क्या हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया। एक्चुअली तो ये ब्रेन हाइपर एक्टिव हुआ तो क्या होगा, आपका बार बार एनर्जी खर्च हो रही है और समझ नहीं आ रहा, आप उससे बात भी नहीं कर पा रहे, वो बता भी नहीं रहा क्यों ऐसा करता है। तो फिर क्या होता है, आप अंदर से आपकी एनर्जी खर्च हो रही है, और एनर्जी खर्च होते क्या होता है, इरिटेबल होना शुरू कर देते हैं आप इरिटेट होना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, काम भी अधिक करना शुरू करते हैं। सपोज आपका बॉस है ना, अब आपका बॉस है, वो आपसे आपको बार बार देखता है, आपकी तरफ मुंह बना के चला जाता है, आप सामने से निकलते हो हाथ मिलाने के बजाय मुंह बना के और साइड से निकल जाता है, तो आप क्या करोगे, सोचोगे शायद मेरे से कुछ गलती हो रही, आप ज्यादा काम करके दिखाओगे, ज्यादा कुछ करोगे, खुश करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, तो सारा सिस्टम हाइपर एक्टिव हो गया ना, और उससे क्या होता है, इतने हार्मोन निकल जाते हैं बॉडी में, आपका सिंपैथेटिक सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है कि आपकी बॉडी में माइल्ड ट्रेमर्स होने शुरू हो जाते हैं, हल्के हल्के, मतलब आप फील करते हो कि माइल्ड ट्रेमर्स, और इंसोमनिया, नींद आनी बंद हो जाती है। ये पहली पहली फेज है बीमारी की, और इसमें क्या होता है, ए पर्सन लुक्स वरिड एंड एंशियस। इसमें चेहरा उसका देखो तो उसका चेहरे से क्या दिखाई देगा, चेहरे से लगेगा वरिड है बंदा, है ना, और एंशियस, इसको कुछ डर सा लगा समाया हुआ अंदर, और ऑलवेज थिंक्स ऑफ सम इम्पेंडिंग डिजास्टर, कुछ ना कुछ होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है। फोन की घंटी बजेगी तो उसको डर लगेगा कुछ ना कुछ, अब बस अब कोई खबर, गलत खबर आई है ना, मान ली बॉस की बात है तो क्या करेगा, अब मेरी बॉस, अब भी बॉस का फोन आया, मुझे अभी बुलाएगा कुछ ना कुछ कहने के लिए, तो बस हमेशा ही थिंक्स ऑफ, अगर वाइफ घर से फोन आ गया ऑफिस में तो कुछ ना कुछ वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगी। ये साइकोसोमेटिक फेज। इस साइकोसोमेटिक फेज में क्या होता है कि इफ द सेम सिचुएशन कंटिन्यूस फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू ईयर्स, मतलब फ्यू डेज मंथ्स, चलो आधा दिन रही कोई बात नहीं, एक दिन रही तो भी कोई बात नहीं, कि तो कुछ दिन लगातार चल जाए, कुछ महीने चल जाए ऐसी बात, या कुछ साल चल जाए ऐसी बात, तो क्या होता है, फिर आपका एक हार्मोन कैटाकोलामिन और ज्यादा बढ़ जाते हैं, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, कॉर्टिसोल लेवल्स और अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है,
तो इससे क्या होगा, और साथ साथ हिस्टामिन एक नया हार्मोन चालू हो जाता है निकलना बॉडी, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर फंक्शनल डिस्टर्बेंस आनी शुरू हो जाती है। फंक्शनल डिस्टर्बेंस किस तरह से, अब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गए, ये कार्टिसोल लेवल क्या करेगा, हमारी ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, और ऐसी स्थिति में हम डॉक्टर के पास जाएं तो हमारी ब्लड शुगर बढ़ी हुई मिलती है, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, दिल में धक-धक होनी शुरू हो जाती है, तो लगता है मुझे कि हार्ट की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है, ठीक है, और बीपी बढ़ जाएगा, सिर दर्द होगा, दर्द होगा, चक्कर आएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेगा आपकी तो आप चेकअप कराओ तो डायबिटीज भी निकलाई और हाई ब्लड प्रेशर भी निकलाया। अगर हम इस स्टेज में भी कंट्रोल कर लें अपने आप को, तो ये एक्चुअली डायबिटीज नहीं है, ना ब्लड प्रेशर है, ये सिर्फ रिएक्शंस हैं। अगर आप इसको यहां कंट्रोल कर लें तो बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, साइकोसोमेटिक फेज तक हम बिना दवाई के ठीक हो सकते हैं, अपने आप ही सेट हो जाएंगे, ठीक है। किंतु अब भी अगर हम नहीं मानते हैं तो क्या होता है नेक्स्ट, फिर आती है सोमेटिक फेज, फिर आ जाती है सोमेटिक फेज। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज फंक्शन ऑफ ऑल दी ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के लगभग सारे के सारे फंक्शंस, सारे के बॉडी के सारे सारे फंक्शंस बढ़ जाते हैं। इसमें देखिए क्या हुआ, कैटाकोलामिन तो अभी भी टॉप पे ही है, एस्ट्रोकोलिन भी निकल रहा है, हिस्टामिन भी निकल रहा है, एक और हार्मोन शुरू हो जाता है 5-HT, ये निकलना शुरू हो जाता है। अब हर आदमी जब पैदा होता है इस धरती पर तो अपना टारगेट ऑर्गन लेके पैदा होता है। टारगेट ऑर्गन क्या कहते हैं, टारगेट ऑर्गन वो होता है जिसपे सारी चिंता का असर पड़ता है। किसी का टारगेट ऑर्गन जैसे मेरा हार्ट है, मेरे को कोई टेंशन हो गई तो मेरा असर हार्ट पे पड़ता है, ठंड बढ़ गई, काम ज्यादा हुआ, कुछ भी हुआ तो मेरा असर हार्ट पे पड़ेगा, ठीक है ना। किसी का पेट होता है तो उसका कुछ भी होगा तो सारा असर पेट पे पड़ेगा, एसिड ज्यादा बन जाएगा, ठीक है। किसी का असर आंतों पे पड़ेगा, उसको डायरिया शुरू हो जाएगा, है ना। किसी का असर गर्दन पे पड़ेगा, गर्दन दर्द शुरू हो जाएगा। किसी का सिर में पड़ता है, किसी की आंखों पर पड़ता है, मतलब हर आदमी का टारगेट ऑर्गन अलग अलग होता है, ठीक है। एक से ज्यादा भी होता है पर अधिकतर एक होता है, अधिकतर एक होता है, एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो अगर हमारा जैसे टारगेट ऑर्गन मान लीजिए हमारा हार्ट है तो उससे CAD चालू हो जाते हैं, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज, अंदर प्लाक्स बनने शुरू हो गए, ब्लॉकेजेस बनने शुरू हो जाते हैं, और स्टोमक है तो एसिड रिफ्लक्स डिजीज शुरू हो गई। अगर थायराइड है तो हाइपर या हाइपो दोनों हो सकते हैं, किंतु उसके मैकेनिज्म में हम नहीं जाएंगे, तो दोनों ही हो सकते हैं। तो एक्चुअली बेसिकली टारगेट ऑर्गन का फंक्शन अधिक बढ़ जाता है, सारे ऑर्गन्स का फंक्शन अधिक नहीं बढ़ता है, कुछ कुछ असर सारी बॉडी पे पड़ता है, किंतु मेनली टारगेट ऑर्गन का पे अधिक असर पड़ता है। तो इसके पीछे उस ऑर्गन में बीमारी होगी नहीं होगी, इस पे दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो हेरिडिटरी बैकग्राउंड, उसको माँ बाप से जीन कैसे मिले हैं, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या है, मतलब उस समय वातावरण क्या है, उसके आसपास अंदर का वातावरण और बाहर का वातावरण कैसा है। अगर उस समय उसको वातावरण अच्छा मिल जाए, उसको या तो अंदर वो अपने आप को बदलना शुरू कर दे, या बाहर के वातावरण को बदलना शुरू, उसके माँ बाप हैं उसके या फ्रेंड्स हैं संभाल लें, उसको हेल्प दे दें, सपोर्ट दे दें, तो क्या होगा, बीमारी डेवलप नहीं कर पाएगी, वहीं बीज उगने लगा था वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। हेरिडिटी तो चेंज नहीं होगी, हेरिडिटी तो वहीं पड़ी रहेगी, किंतु हेरिडिटी मैनिफेस्ट करे इसके लिए बहुत जरूरी है एनवायरमेंट, उसको ये धरती है, एक्चुअली एनवायरमेंट क्या, धरती है, पानी है, अगर बीज को धरती और पानी ना मिले तो वो पेड़ नहीं बन सकता, बीमारी के रूप नहीं धारण कर सकता है। जैसे अगर हमारे हार्ट में हुआ तो हार्ट रेट बढ़ा, बीपी बढ़ा, आर्टरी सिकुड़ने लगी बार बार, ये हिस्टामिन बढ़ जाने से, 5-HT बढ़ जाने से, है ना, कैटाकोलामिन बढ़ जाने से क्या वो बार बार आर्टरी सिकुड़ने लगी, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगा, अच्छा वाला कम बनने लगा, और बार बार क्लॉट बनने लगे, ब्लड के क्लॉट, छोटे छोटे क्लॉट बनते थे और चिपक जाते थे उसके ऊपर, तो धीरे धीरे क्या हुआ, आर्टरीज में ब्लॉकेज धीरे धीरे 10%, 15%, 20% धीरे धीरे बनने शुरू हो गए। ऐसी और बीमारी के लिए छाला, पेट में अल्सर बनना शुरू हुआ, थोड़ा सा इरोजन शुरू हुआ, शुरू में इरोजन बनते बनते थोड़ा सा और लेयर उतरती, फिर थोड़ी और लेयर उतरी, फिर थोड़ी और लेयर, फिर धीरे धीरे अल्सर बन गया, क्रेटर बन गया, और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती चली गई। अब देखिए फिर लास्ट में आती है ऑर्गेनिक फेज, तो पहली साइकिक फेज, दूसरी साइकोसोमेटिक फेज, तीसरी सोमेटिक फेज, और चौथी ऑर्गेनिक फेज। तो फिर क्या होता है, अब भी हम समझ नहीं पाते हैं बीमारी को, या हमें कोई सहारा नहीं मिल पाता है, तो हमें क्या होता है, लीजन इन दी टारगेट ऑर्गन प्लस ऑटो इम्यून फिनोमेना। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर बीमारी में अप्लाई करती है। जब उस बॉडी के उस ऑर्गन में, टारगेट ऑर्गन में जब बीमारी सेट होने लगी, तो क्या होता है, उस टारगेट ऑर्गन में सेट होने लगती है तो बॉडी फाइट करती है, बॉडी इसको स्वीकार नहीं करती कि हमारी बॉडी में टिक जाए बीमारी, ये फॉरेन बॉडी है आके टिक जाए और हमारे के बॉडी में रहने लगे, चाहे वो अल्सर हो, चाहे वो एक ब्लॉकेज हो हार्ट की आर्टरी में, चाहे थायराइड के अंदर आपके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म शुरू हो या हाइपरथायरॉयडिज्म शुरू हो, कोई बीमारी भी हो फॉर दैट मैटर, चाहे आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो जाए इस एरिया में, तो उसके साथ ऑटो इम्यून फिनोमेना, बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है, बॉडी उसको फाइट आउट करने की, अपने ही उस डेड वाले हिस्से को, कमजोर वाले हिस्से को निकाल देना चाहती है, मार देना चाहती है, उसे कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बाय दिस टाइम द साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो साइकोसोमेटिक जो फैक्टर्स थे बॉडी में, वो हार्ट रेट तेज होना, घबराना, वो सेट हो चुका होता है, प्रॉब्लम जा चुकी होती है, वो सिम्टम, वो भूल चुके होते हैं इन बातों को आप, तो वो खत्म हो चुका होता है, किंतु अंदर प्रोसेस शुरू हो जाता है, तो ये सबसाइड कर जाते हैं ग्रेजुअली एज द डिजीज फुल्ली सेटल्स डाउन इन द टारगेट ऑर्गन, और उस टारगेट ऑर्गन में बीमारी सेट हो जाती है। अब पेशेंट हमारे पास इस टाइम आता है, पेशेंट को इस टाइम अब क्या आर्टरी ब्लॉक होगी 30% 40%, कोई सिम्टम नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, 50% आर्टरी ब्लॉक, कोई सिम्टम पेशेंट को नहीं है, दौड़ता भागता, खूब दौड़ता, पहाड़ी पर चढ़ता, कोई दिक्कत नहीं होती, 60% ब्लॉक हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70% जब आर्टरी ब्लॉक हो गई जिस दिन, उस दिन पेशेंट को चलते टाइम क्या होता है, सांस फूलने लगता है, छाती भारी होने लगती है, तो अब डॉक्टर के पास पेशेंट आ जाता है। तो डॉक्टर के पास आया तो क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या किया, देखा ईसीजी, देखा टीएमटी किया, टीएमटी पॉजिटिव, जाओ एंजियोग्राफी करा के आओ, एंजियोग्राफी में देखा था ब्लॉक है ना, तो क्या देखा हमने, ब्लॉक देखा, तो हमने क्या किया, सीधा क्या मारा यहां पर, एक बैलून फुलाया अंदर और एंजियोप्लास्टी कर दी, ठीक है, और एक अंदर एक स्प्रिंग बिठा दिया, ठीक है, स्टेंट बिठा दिया, तो हमने क्या किया, जाओ ठीक हो गए, हुआ क्या, पर क्या उसकी आदत बदल दी हमने, फिर दोबारा उसके सामने वही चीज आएगी, वैसा ही बॉस उसको मिलेगा, वैसे ही बीवी उसको मिलेगी, फिर क्या होगा, है ना, बीवी तो वही, बीवी तो बदली नहीं, बॉस तो बदला नहीं, है ना, है ना, या हस्बैंड तो बदला नहीं, है ना, बदला क्या, है ना, तो भी नेचर नहीं बदलेगा, मान लो बाहर का एनवायरमेंट बदल दो उसका, तो भी बदला तो कुछ नहीं। मैंने हस्बैंड भी कहा, मेरा ध्यान बाद में इधर गया, मैंने कहा हार्ट डिजीज अधिकतर हस्बैंड करते हैं, तो फिर वो तो बदला नहीं था ना, ना अंदर की आदतें बदली थी, तो हमने क्या बदला, सिर्फ उसका एक अंदर स्प्रिंग बिठा दिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर की गोली दे दी, डायबिटीज की दवाई दे दी, किंतु अंदर जो ऑर्गन, जो बीमारी सेट हो चुकी थी, वो तो हमने रियल पैथोजेनेसिस तो मिस ही कर दिया, डॉक्टर रियल पैथोजेनेसिस कभी नहीं पूछता है, पेशेंट उसके पास आया, उससे बात करेगा, हाँ क्या तकलीफ है, छाती में दर्द है, जाओ ईसीजी करा के आ जाओ, बीपी देख लेगा, शुगर अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा के, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के आ जाओ, ठीक है, और उसकी दवाई, एक कोलेस्ट्रॉल की दवाई लिख दी और एक ब्लड प्रेशर की दवाई लिख दी और डायबिटीज की गोली लिख दी एक, और डाइट चार्ट दे दिया हाथ में, जाओ और अपना ईसीजी करा लो, टीएमटी करा लो, अगली बार आना एंजियोग्राफी करा के ले आना, देख के उसका भेज दिया, 1,00,000 रुपया उसका खर्च करा दिया, 20 में 10,000 कमीशन खा लिया, ठीक है, दोनों खुश है ना, 6 महीने में फिर आर्टरी ब्लॉक हो गई, फिर दोबारा एंजियोग्राफी करा दी, फिर एंजियोप्लास्टी करा दी, 10,000 फिर मिल गए, दोनों खुश है ना, तो चेंज तो कुछ नहीं हुआ है ना, तो ये प्रॉब्लम हमारी आ जाती है ना, डायग्नोज एज प्योरली, और इसको हम क्या डायग्नोज करते हैं, एज ए प्योरली ऑर्गेनिक डिजीज, ठीक है, तो होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द अर्लियर बैकग्राउंड ऑफ दिस पेशेंट, तो पता करो उसका कि उसकी एक्चुअली उसको है क्या, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, उस आदमी की कितनी उसके अंदर एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, कितना एंगर है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका जीने का ढंग क्या है, उसके अंदर जीवन में खुशी कितनी है, क्या काम करता है ना, उसकी उसकी वाइफ से बनती कि नहीं बनती है, उसके हस्बैंड से बनती कि नहीं बनती, उसके बच्चे कितने हैं, कितने की शादी हो, कितने की शादी नहीं हुई है, ठीक है, ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग, वो स्मोकिंग करता है नहीं करता, एवरीथिंग ट्राई टू फाइंड आउट एवरीथिंग, तब उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, तब उसको हम सही मायने में उसका कॉज पता कर सकते हैं कि बीमारी हुई कैसे उसको, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द अर्लियर बैकग्राउंड ऑफ दिस पेशेंट एंड ओवरकम इन द अर्ली स्टेज, उसको शुरू में साइको साइकिक फेज में ओवरकम करो, नहीं तो साइकोसोमेटिक फेज में ओवरकम करो, उस टाइम तो हम इग्नोर कर देते, कुछ नहीं है तेरे को, जा ये एल्पेक्स खा लेना एक सोते टाइम और फिर जाके ठीक हो जाएगा, एल्पेक्स खाने से ठीक होती है बीमारी क्या, तो एल्पेक्स खाने से हम ये लिख के देते हैं एल्पेक्स, तो उससे बात नहीं बनती है, ठीक है। एंड इससे फिर हमारी कंप्लीट एंड लास्टिंग रिकवरी हो सकती है, तभी हम ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि अभी जैसे आप आज हमने बहुत सारे साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर्स के द्वारा पता लगा चुके हैं कि कौन सी बीमारी किस तरह से होती है, कौन सी बीमारी, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम किन लोगों को होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम जिनको रहती है, भावनात्मक लेवल पे प्रॉब्लम्स रहती हैं, लैक ऑफ जॉय जिनमें खुशी नहीं रहती है, हार्डनिंग ऑफ हार्ट, अपने हार्ट को बहुत सख्त दिल बन गए हैं, अपने हार्ट को कोई बात हो तो उसको इग्नोर कर देंगे, बच्चों की बातों को नहीं सुनेंगे, दूसरे की फीलिंग्स को नहीं महसूस करेंगे। आज हम दूसरों की फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे, दूसरे भी हमारी कल हमारी फीलिंग्स को महसूस नहीं करेंगे, ये डेफिनेट बात है। और बिलीफ इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये हमें पक्का विश्वास हो जाता है कि हम चिंता के बगैर टेंशन को गुजारा ही नहीं है। मेरे बच्चे हैं, 3 बच्चियां हैं, उनकी शादी करनी है, कौन करेगा, मुझे तो करनी पड़ेगी, मुझे तो संभालना पड़ेगा, है ना, ये काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा। तो जब इस तरह का विश्वास मन में बैठ जाता है तो फिर हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम्स की उस दिन से शुरुआत हो जाती है ना। किंतु हार्ट की सचमुच में ऐसा है कि हम मुझे ही करना है, करण क्रामनार को ही हो रहा है, करना हम क्या समझते हैं, जैसे कि एक आदमी घोड़े पे बैठा हुआ, गठड़ी सिर पे रख के बैठा हुआ कि सारा बोझ मैंने उठा रखा है, ठीक है, जबकि बोझ तो कौन उठाता है, घोड़ा ही उठा रहा है। हमें क्या करना है, सर घोड़े पे रख देना, हाथ अपना रख देना ताकि वो बोझ गिरे नहीं, तो इतना भी तो कर सकते हैं ना, किंतु हम गठड़ी को सिर पे रखना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारे अंदर हार्ट की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक किनको होता है, स्क्वीजिंग ऑल द जॉय आउट ऑफ हार्ट, जॉय आउट ऑफ हार्ट इन फेवर ऑफ मनी और पोजिशन। जब हम सारा निचोड़ के सारा दिल से खुशी को निकाल दें, प्रेम को निकाल दें, तो फिर हमें हार्ट अटैक होता है। 1-2 महीना भी ऐसा कर दो ना, बिल्कुल मुझे कोई आराम नहीं करना है, मुझे तो बस आज मेरे को कल से ये काम होना है, मुझे आज बस लगे ही रहना है इस काम में, टेंशन मतलब उसमें इतना अपने आप को रिजिड कर लेते हैं, यूं टाइट कर लेते हैं अंदर से, बिल्कुल भी मोल्ड नहीं करते हैं, तो फिर हमें हार्ट अटैक समझे शुरुआत हो गई, ठीक है। मतलब हार्ट अटैक हो ही जाएगा 2-3 दिन में, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, कोई करना चाहे तो ऐसा करके भी देख सकते हैं। डायबिटीज, लॉन्गिंग फॉर व्हाट माइट हैव बीन, मैं इसकी बजाय कुछ और होता, है ना, डॉक्टर के बजाय मास्टर होता या कुछ और होता, है ना, किसी और कुछ होता, ए ग्रेट नीड टू कंट्रोल, अपने पर बहुत अटेंशन रखते हैं अपने को, मैं ऐसा ना करूं, वैसा ना करूं, मुझे ऐसा देखेगा कौन क्या करेगा, ऐसा देखो, अरे मेरा नेचुरल रहो ना, जो अपने आप को नेचुरल रहने की कुछ अलावा कुछ और बनाने की कोशिश करते हैं तो उनको डायबिटीज हो जाते हैं। डीप सॉरो, इसमें देखिए जीन्स की बात है। एक बात मैं आपको और बता दूं, 80 साल से पहले कोई बीमारी भी अपनी क्रिएशन होती है और 80 साल के बाद गॉड्स गिफ्ट होती है, ठीक है, चाहे हार्ट अटैक हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, ठीक है। 80 साल के बाद तो मतलब 80 साल तक आज की लाइफ हमारी 80 साल मैक्सिमम है, ठीक है, आज के समय के हिसाब से 70 साल भी कह सकते हैं, क्योंकि 70 साल के बाद 70 साल कर लेते हैं, 70 साल के बाद 70 साल तक हमें बीमारी होती है तो हमारी अपनी क्रिएशन है और 70 साल के बाद वो फिर हमारी बात नहीं है, ठीक है। तो नो स्वीटनेस लेफ्ट इन लाइफ, जब जीवन में स्वीटनेस नहीं होती क्या होता है, बॉडी फिर स्वीटनेस क्रिएट करती है अंदर से, ठीक है, शुगर पैदा हो जाती है ना, ठीक है। हाइपरटेंशन क्यों होती है, लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम नॉट सॉल्व, लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, सॉल्व नहीं हो पा रही है, चाहे हमारी वाइफ से नहीं बन रही बहुत लंबे समय से, है ना, या बच्चे से नहीं बन रही है, या हमारे दोस्त से नहीं बन रही है ना, अब जिससे किस काम करते हैं वहां नहीं बन रही है, तो ब्लड प्रेशर, जीन पहले चाहिए, बगैर जीन के नहीं होगी, अगर जीन अंदर है तभी होगी। बल्कि ना अंदर एक ज्वालामुखी धधक रहा है ना, कहना चाहता हूं कुछ कह नहीं पा रहा हूं, ठीक है, और मेकिंग माउंटेन्स मोर आउट ऑफ मोर, छोटी छोटी बात का हम राई का पहाड़ बना देते हैं, तो ऐसे लोगों को बाद में जाकर ब्लड प्रेशर हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। मैनेजमेंट तो फिर बाद में बताएंगे आपको डॉक्टर। अब देखो, मैं समझता हूं थोड़ा सा आपको 21वीं सेंचुरी में ले चलूं। देखो अब एक्चुअली क्या, ह्यूमन बीइंग जो है दो शब्दों से बना है, ह्यूमन प्लस बीइंग, ह्यूमन शब्द निकला ह्यूमस से और बीइंग निकला है लाइफ फोर्स से, ठीक है। लाइफ फोर्स माना सोल और इसका मतलब सॉयल, दोनों में फर्क क्या है, एक सॉयल है एक सोल है, क्या फर्क है दोनों में, इसमें आई है इसमें यू है, ठीक है। तो ये जो है सॉयल है मैटर और ये है स्पिरिचुअल एनर्जी, ठीक है। जो कि इस शरीर को चला रही है। ये रियल एनाटॉमी है इंसान की। आज रियल एनाटॉमी फिजियोलॉजी है कि आत्मा में ये एनर्जी है, ऊर्जा है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, है ना। इसको इंग्लिश में हम कहेंगे KP2 लो हाई ब्लड प्रेशर, राइट। याद करना है ना आपको एक सीक्वेंस में, KP2 लो हाई ब्लड प्रेशर, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स। तो ये 7 गुण हैं जिससे हमारे बॉडी के 7 अंग चलते हैं। नॉलेज से हमारा नर्वस सिस्टम चलता है। वैसे तो बॉडी के हर अंग को 7 गुण ही चाहिए, किंतु एक विशेष गुण के बगैर वो चल नहीं सकता। जैसे कार को पानी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए ना, किंतु पेट्रोल के बगैर कार नहीं चल सकती है। पानी भी चाहिए, पानी अगर हो खाली तो खाली पानी से नहीं चलेगी, पेट्रोल भी डालना पड़ेगा तब चलेगी, ठीक है। हवा भी चाहिए कार को, किंतु मेन चीज पेट्रोल चाहिए। ऐसे ही नर्वस सिस्टम को सारी चीज चाहिए, ज्ञान भी, पवित्रता, शांति, प्रेम, सब कुछ चाहिए, किंतु बिना नॉलेज के प्रेम, ज्ञान, ये हमारा ब्रेन डेवलप नहीं कर सकता, ना चल सकता। तो नर्वस सिस्टम, प्योरिटी से हमारा स्किन और इम्यून सिस्टम, पीस से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लव से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हैप्पीनेस से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लिस से हमारा हार्मोनल और क्रिएटिव सिस्टम, और पावर से हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, और 7 गुण मिलकर के हमारे अंदर जो गंदगी है उसको बाहर निकालते हैं। हर सेल में एक्सक्रीटरी सिस्टम है, हर सेल से जहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो वो जो है हमारे 7 गुण मिलकर निकालते हैं। तो इसको बीमारी कौन पैदा करता है? ईगो जो है हमारे ब्रेन की बीमारी इसको अधिक पैदा करता है। टाइप ए पर्सनैलिटीज जो है ना वो हमारे ब्रेन को ब्लॉक कर देती हैं। इम्प्योरिटी और लस्ट जो है हमारे स्किन और इम्यून सिस्टम को ब्लॉक कर देती है। एंजाइटी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देती है। फियर एंड एंगर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम को खराब कर देते हैं, ठीक है। और सैडनेस, डिप्रेशन, सिनिसिज्म, दोष निकालने की आदत, हॉस्टिलिटी हमारे पेट को खराब कर देती है। और डिप्रेशन जो है हमारे हार्मोनल सिस्टम को खराब कर देता है, क्रिएटिव सिस्टम को खराब कर देता है। और अगर हमारे अंदर पावर्स ना हो, लेजीनेस हो, तो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बेकार हो जाता है। और अगर हम आइसोलेशन में रहें, 7 सिस्टम का बैलेंस ना कर पाए, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बेकार हो जाता है। और उससे हमारे अंदर क्या होता है, डिस ईज पैदा हो जाती है। इसे हम लॉस ऑफ ईज भी कह सकते हैं, पीस, है ना। और इससे क्या होता है, सातों को मिलकर कंबाइन करके जब काम करते हैं तो हेल्दी हो जाते हैं। हेल्दी शब्द 2 शब्दों से बना, हील प्लस डाई, हील प्लस डाई, डाई सेल्फ। तो हील डाई सेल्फ मतलब अपने आप को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो। और इसको हिंदी में स्वस्थ भी कहते हैं, स्व माना आत्मा और अस्थ माना स्थित। एक्चुअली इसका अर्थ जब आयुर्वेद में लिया गया स्वस्थ माना, तो जो आत्मिक स्थिति में स्थित है वो ही स्वस्थ है। आज की डेफिनेशन नहीं, बहुत पुरानी डेफिनेशन है। जो आत्मिक स्थिति में वो स्वस्थ है, और जो आत्मिक स्थिति में स्वस्थ स्थित नहीं है वो अस्वस्थ है। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं समझता हूं जिसमें हम यहां देख लें कि इसी से सारी प्रॉब्लम पैदा होती है, आईनेस और माइनस पैदा होती है सॉयल कॉन्शियसनेस से। क्योंकि सॉयल कॉन्शियसनेस क्या करती है, हमें डिवाइड कर देती है। मैं और मेरेपन की फीलिंग क्या करती है, ये मेरा, ये तेरा, ये हमारा, ये दूसरे का, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आईनेस से ईगो पैदा होती है, और ईगो से हम टाइप ए पर्सन बनते हैं। और टाइप ए पर्सनैलिटी वाला क्या करता है, हर चीज में अपनापन जमाता रहता है ना। हाँ जी, ओके। टाइप ए पर्सनैलिटी क्या करती है, टाइम कॉन्शियस होता है, ठीक है। मैं लगता है टाइम कॉन्शियस हो गया था थोड़ा सा, सॉरी। तो टाइम कॉन्शियस होता है ऐसा आदमी, पंक्चुअल होता है बहुत हर चीज में। 9 बजे तो 9 बजे ही पहुंचना है, 9:30 तो 9:30 पहुंचना है। अगर 9:30 बजे नहीं आया आदमी तो बहुत परेशान हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आदमी जो होते हैं, और ऐसे आदमी परफेक्शनिस्ट होते हैं, हर काम एक्यूरेसी से होना चाहिए, इस मेरे हिसाब से होना चाहिए, है ना। परफेक्शन आइडियलिस्टिक होते हैं, ऑलवेज हरिंग फॉर डेडलाइंस, है ना, कि भाई आज ये काम पूरा शाम तक होना ही चाहिए, ठीक है। और ऐसे आदमी दूसरे आदमी पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, कि जैसे वो समझते हैं मेरे पास ज्यादा समझ है, मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा अकलमंद हूं, अगर मैं इसको काम दूंगा तो ये काम ठीक से नहीं करेगा। तो ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, सबसे ज्यादा हार्ट उनको हाइपरटेंशन होता है, सबसे ज्यादा डायबिटीज होती है, सबसे ज्यादा हर बीमारी सबसे ज्यादा उनको ऐसे लोगों को होती है। क्योंकि ऐसे आदमी एक समय में 3 समय का बोझ होते हैं, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, अपना भी, पूरे परिवार का भी, पूरे देश का भी, है ना पूरे संसार का भी, है ना। अटैक पार्लियामेंट पे होता है, लगता है उनको अटैक हमारे ऊपर हो गया, है ना। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, उनको इतना ज्यादा लगता है कि बस मैं अंदर से हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को अधिक प्रॉब्लम होती है। और जो इनसे जो अटैचमेंट जिनको होती है, माइनस से अटैचमेंट पैदा होती है, ऐसे लोगों को एंजाइटी पैदा होती है, ग्रीड पैदा होती है, लस्ट पैदा होता है, और जब हम परसीव करते हैं डेंजर टू दिस आईनेस और माइनेस, तो हमें एंगर पैदा होता है, एंगर या फियर। एंगर फियर कब पैदा होता है? अगर सामने वाला मुझसे कमजोर, उससे मुझसे ताकतवर है, तो फियर पैदा हो जाता है ना। सामने वाला मुझे खतरा महसूस हो रहा है इनसे, सामने से वो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, बहुत रिसोर्सेज वाला है, तो मुझे डर लगेगा ये मेरा कुछ ना गड़बड़ ना कर दे, ठीक है। और मुझसे कमजोर है, मेरे बराबर वाला, तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, है ना। मतलब जो नीचे वाला उससे मुझे कभी डर पैदा नहीं होगा, डर हमेशा शक्तिशाली से पैदा होता है ना। और जब मैं अपने आप, मान लीजिए मैं सुबह से काम कर रहा हूं, बहुत ज्यादा अच्छे से काम दिल से लगा हुआ हूं, और शाम को कोई आए मुझे गाली दे दे, तो तुम क्या कर रहे हो, सारा दिन तुम टाइम वेस्ट कर दिया, तो क्या होता है? कितना हम अपने आप को बुझ जाता है, दिल शिकस्त हो जाते हैं। किंतु जब हम उससे भी अधिक, वो थोड़ी देर के लिए होता है, किंतु जब कोई मैं अपने आप को अंदर से गाली दूं, अपने आप को अंदर से अब्यूज करूं, सेल्फ अब्यूजिव बिहेवियर जब बन जाता है मेरा, अपने आप को धिक्कारने का, बार बार अपने आप को कोसने का, तो क्या होता है? फिर डिप्रेशन की बीमारी शुरू होती है। तो कभी भी अपने आप को कभी ना कोस, कभी नहीं। इसलिए सौमान में रहना कहते हैं कि सौमान में रहो, तो ये डिप्रेशन पैदा होता है। जब इन सब चीजों में बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, तो हम लेजी हो जाते हैं, और लेजी होने से हम क्या होता है, सारी एनर्जी खर्च होगी ना, तो हमारे अंदर ईज खत्म हो गई, इसी को हम कहते हैं डिस ईज। और आज के समाज में क्या कर रहे हैं हम, सारा का सारा पैसा कहां इस पर लगा रहे हैं, सारी रिसर्च किसके ऊपर कर रहे हैं, इस सॉइल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, है ना। इसलिए क्या हो रहा है, इसलिए सारा पैसा कहां जा रहा है, मिट्टी में जा रहा है, ठीक है। इसलिए हर बीमारी बढ़ती जा रही है। ब्लड प्रेशर को देखो, ब्लड प्रेशर आज शहरों में 30% लोगों को ब्लड प्रेशर हो गया। डायबिटीज देखो, कहां 1% लोगों को थी, और आज 5-6% लोगों को डायबिटीज है। ऐसा अंदाजा 10-11% लोगों को डायबिटीज हो जाएगी, है ना, ठीक है। कहते हैं आज संसार में दो तरह के लोग पैदा हो जाएंगे, एक हॉट एंड स्वीट, है ना, हॉट एंड स्वीट, है ना। कुछ लोग हॉट होंगे, कुछ स्वीट होंगे, और कुछ दोनों होंगे, है ना। हॉट माना ब्लड प्रेशर वाले, और स्वीट माना डायबिटीज वाले, और कुछ होंगे हॉट एंड स्वीट, है ना। अभी हमको हॉट एंड स्वीट नहीं बनना है, ठीक है, क्या बनना है, कूल एंड काम, है ना। तो ये नॉट इवन ए सिंगल पेनी इज बीइंग स्पेंट ऑन द रिसर्च और स्टडी ऑफ द बीइंग व्हिच इज ऑल इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड इज इन लाइफ। जिसके आत्मा के बगैर तो कुछ पैसे की स्टडी की वैल्यू नहीं है। एक मिनट नीचे करें, अगर हम सोल कॉन्शियस हो तो इससे यूनिफाई हो जाता है वर्ल्ड, मैं सबका सब मेरे, है ना, और अनलिमिटेड विजन, सब हमारे, ऐसी फीलिंग आती है। इससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड पैदा होती है, इससे हमारे अंदर ईगो पैदा होती है, इससे सेल्फ डिग्निटी पैदा होती है, इससे टाइप बी पर्सनैलिटी बन जाती है। मुझे पता है कि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, सबके अंदर अकल है ना, खाली मेरे अंदर इंटेलेक्ट दिए क्या, बाकी को मेरे को माइंड इंटेलेक्ट और पर्सनैलिटी दी है, इसको खाली माइंड और पर्सनैलिटी दी है, ऐसा है क्या, है ना। सबको इंटेलेक्ट मिली है ना, बराबर इंटेलेक्ट मिली है, तो सब अपना काम अपने हिसाब से करेंगे ना। वाई शुड आई बॉदर कि वो काम ऐसे क्यों करता है, वो काम ऐसे क्यों करता है, शायद वो करेगा नहीं करेगा, वो सब करेंगे, यज्ञ इस तरह से चल रहा है ना। तो इस तरह से हमारे अंदर टाइप बी पर्सनैलिटी, इजी गोइंग। कभी ऐसा टाइप बी वाले क्या कहते हैं, कभी नहीं कहेंगे 9:30 बजे आना, या मैं 9:30 बजे आऊंगा, कहेगा 9 से 10 बजे आएंगे, 10-11 बजे आ जाएंगे, है ना, 11-12 बजे काम कर लेंगे, ठीक है। ऐसा हमेशा बोलना चाहिए, अगर आपको इजी रहना है, खुद इजी रहो, दुआएं लेनी है और दुआएं देनी तो क्या बोलो, कभी टाइम 9:30 बजे का टाइम नहीं देना, ठीक है, क्या बोलो, ये आपका टेस्ट लेते हैं, ठीक है। देखो सबको टाइम टेबल दिया ना, अपने आप आ जाते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब जो है टाइप बी वाले इजी रहते हैं, केयर फ्री रहते हैं, अपने आप की फीलिंग्स को ट्रस्ट कर सकते हैं, दूसरों में अपनी बात को कह सकते हैं, इन लोगों को आइसोलेशन नहीं हो सकता है कभी भी, हल्के रहते हैं, हल्का दम रहते हैं, कहते हैं बाप बैठा ना कर लेगा, अपने आप देख लेगा, आराम से हो जाता है, सचमुच में ऐसा हो जाता है। तो जब हम जिस स्थिति में होते हैं उसमें ऑटोमेटिकली सातों गुण हमारे साथ में इमर्ज हो जाते हैं, ज्ञान भी है, पवित्रता भी, शांति, प्रेम, सुख, आनंद। और जिसके अंदर शांति, प्रेम, सुख, आनंद है, वो सब कुछ कर सकता है, सहन भी कर सकता है, सामना भी कर सकता है, समा भी सकता है। पहले 6 गुण अति आवश्यक हैं पावर्स लाने के लिए, अगर पहले 6 गुण नहीं है तो पावर्स भी नहीं है। शांति प्रेम है तो ही सब कुछ हो सकता है। टाइम मेरा पूरा हो गया। तो इससे हम हेल्थ कॉन्शियस बन जाते हैं। आई थिंक लास्ट एक वर्ड और इनक्यूरेबल डिजीज है ना। इनक्यूरेबल डिजीज का मतलब क्या है? जैसे हार्ट डिजीज आज इनक्यूरेबल है ना, कैंसर इनक्यूरेबल है, एड्स इनक्यूरेबल है ना, बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स इनक्यूरेबल है, ठीक है, लेकिन दवाई देते हैं तो ठीक दबी रहती है, किंतु दे आर इनक्यूरेबल, मोस्ट ऑफ देम आर इनक्यूरेबल। तो इसका रियली इसका मतलब क्या, एक्चुअली इट रियली मीन्स दैट इट कैन नॉट बी क्योर्ड बाई आउटर मेथड्स, दवाइयों से और सर्जरी से ठीक होने वाली नहीं है, एंड दैट वी मस्ट गो इन विद इन, अपने अंदर जाना पड़ेगा। इन प्लस क्यूरेबल, जिसने वर्ड बनाया था इन प्लस क्यूरेबल था कि वी कैन क्योर बाय गोइंग इन, अपने अंदर जाएं, उसका कारण पहचाने तो हम उसको निकाल दें तो ठीक हो जाए। नेक्स्ट अच्छा देखो ये आपके लिए नई चीज बनाई है। देखो इंसान जो है ये नई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आदमी की, ठीक है, देखो ये तो आत्मा है और ये माइंड है, ये दोनों के दोनों नॉन फिजिकल है, ठीक है, दिखाई क्या देता है हमें सिर्फ, एक ऊपर करो थोड़ा ऊपर करो, दिखाई सिर्फ हमको ये देता है फिजिकल, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं, नर्वस सिस्टम है, स्किन इम्यून सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम इसको इसको सिर्फ देखते हैं, ये फिजिकल है, किंतु चलता कैसे है ये ऊपर से नीचे करो नरेश, ये 21वीं सेंचुरी की बात है, ठीक है, ये जमाना है किसका, अभी सोल माइंड बॉडी का, ठीक है, वो था 19वीं सेंचुरी थी बायोमेडिकल की, बायोमेडिकल मॉडल ऑफ हेल्थ, 20वीं सेंचुरी थी बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ हेल्थ, और अब 21वीं सेंचुरी है सोल माइंड बॉडी मॉडल ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, है जी, दैट वे आल्सो यू कैन से, मतलब मुश्किल कहना तो साइकोसोशल स्पिरिचुअल कह सकते हैं, अगर इजी कहना है तो हम इसको सोल माइंड बॉडी कह सकते हैं। तो ये जो आत्मा है इसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी है, आत्मा में स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये 7 गुण हैं जो कि इस मन के थ्रू हमारी बॉडी में बहते रहते हैं, और मन के अंदर 4 चीजें हैं, टीम TEAM थॉट्स, इसी में ये एक्चुअली मेंटल एनर्जी है, थॉट्स इमोशंस एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज। तो ये जो 7 चीजें हैं ये बहती हैं हमारे संकल्पों के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे भावनाओं के द्वारा हमारी बॉडी में, हमारे एटीट्यूड के द्वारा हमारी बॉडी में, अगर हमारे मेमोरीज के द्वारा हमारी बॉडी में, अगर इनमें से एक भी नेगेटिव हो जाए तो ये शक्तियां हमारे अंदर बह नहीं सकती, हमारे सिस्टम को चला नहीं सकती। और यही कारण है जैसे हार्ट को लव चाहिए ही चाहिए, अब आपके मन में संकल्प आ गए, ये विचार है कि लव तो आज दुनिया में कोई किसी को करता ही नहीं है, ये भावना है कि आपको ना आज का प्यार किसका, कोई किसी का प्यार, सब निस्वार्थी प्यार है, ठीक है, तो ये मन में फीलिंग आ गई, एटीट्यूड जीवन में प्रति प्यार के प्रति पैदा हो गया, ऐसा या आपकी स्मृतियां ही ऐसी हैं, उसने धोखा दिया था मुझे, उसने धोखा दिया था, उसने धोखा दिया था, उसने धोखा, सब पक्की पक्की स्मृतियां डाली हुई अंदर, तो क्या होगा, आपके हार्ट में लव का फ्लो होना रुक जाता है। एंड दे से दैट लव फ्लो टू द हार्ट इज इक्वल टू कोरोनरी ब्लड फ्लो, जितना दिल में प्यार बहता है उतना ही खून बहता है, आर्टरीज में बहता है। तो अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ गई तो क्या होगा, हार्ट की आर्टरीज धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाएंगे, है ना। इस तरह से ही हमारा सांस की बात है, सांस की नलियां, अगर ये फीलिंग आ गई, शांति कहां आज दुनिया में, शांति सब जगह अशांति, शांति तो है ना, बाहर इतना पॉल्यूशन, ये वो सब हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में, तो क्या होगा, हमारे अंदर सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है ना, तो ये शुरू हो जाएंगे। मतलब इस तरह से जीन्स पहले होने चाहिए, वातावरण होना चाहिए, वो सब ठीक है, किंतु वो उसको घटाना या बढ़ाना हमारे हाथ में है आज, उसको कैसे घटाना बढ़ाना वो हमारे हाथ में। तो स्पिरिचुअल आत्मा का कनेक्शन हमेशा परमात्मा से रहता ही है, अगर हम सोल कॉन्शियस हैं, अगर हमारा सोल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल है। मेंटल एनर्जी हमें कहां से मिलती है, नेगेटिव वाली तो दुनिया से मिलती है, अखबारों से, टीवी से, सब जगह से मिलती है, दोस्तों से मिलती है, किंतु पॉजिटिव कहां से मिलती है, सिर्फ वो मुरली से मिलती है। और फिजिकल एनर्जी कहां से, फिजिकल एनर्जी मिलती है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर मेडिसिन। अगर डॉक्टर से आपने पैसे खाए होंगे, वैसे मैं एक कहा करता हूं कि आज के डॉक्टर्स सभी पिछले जन्म बनिए थे, सूदखोर बनिए जैसे होते ना, है ना, और आज सभी पेशेंट इतने क्या हैं, सब पैसा लेके, सब पैसा उनका मार के आए हुए हैं, ठीक है। तो पैसा जब तक डॉक्टर्स का नहीं देंगे तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, ठीक है, केमिस्ट का भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो बिना मेडिसिन के भी हम ठीक नहीं हो सकते, तो मेडिसिन भी आवश्यक है, क्योंकि हमारे ही कर्म भोग हैं, तो चारों चीजों की आवश्यकता है, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर मेडिसिन की, इन तीनों, खाली इसकी आवश्यकता नहीं है, तीनों की जब हार्मनी होगी तो ही हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। एक्चुअली राजयोगा क्या है, राजयोगा इज ए साइंस एंड आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग स्पिरिचुअल मेंटल एंड फिजिकल एनर्जी फॉर एंजॉइंग एवर हेल्दी लाइफ। दैट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ राजयोग. ठीक है, राजयोग इज नॉट ओनली कनेक्टिंग टू सुप्रीम सोल, एवर वेल्दी एंड एवर हैप्पी लाइफ. आई थिंक लास्ट वाली स्लाइड दिखा दो, बस ये दिखा. तो इसी को हम कहते हैं सोल माइंड बॉडी मेडिसिन भी कह सकते हैं. ये बीमारी कैसे होती है, ये नहीं, नहीं, नहीं. पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज, बस ये बीमारी है. बीमारी कैसे होती है, जब भी हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो क्या होता है, हमारा परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है, जिसे कहते हैं वर्टिकल डिस्कनेक्शन, और हमारी दूसरी आत्माओं से कनेक्शन कट जाता है, जिसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्कनेक्शन. तो इससे क्या होता है, हम आत्मा में क्या फील करते हैं, आत्मा क्या होती है, हमारे अंदर और ज्यादा अहंकार बढ़ जाता है, और ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, क्योंकि ऊपर से भी कनेक्शन कट गया, साइडों से दोस्तों से भी कनेक्शन कट गया, बीबी से भी ढंग से बात नहीं कर सकते, बच्चों से भी ढंग से बात नहीं कर, दोस्तों से भी बात नहीं कर सकते, मैं अपने आप में बहुत अकड़ा रहता हूं. तो क्या होता है, ईगो हो गई, इनसिक्योर हो गई, और मुझे कोई प्यार भी नहीं करता, तो हम आइसोलेट महसूस करते हैं. तो आइसोलेट महसूस करने से हमारे क्या होता है, हम बैटरी अपनी डाउन फील करते हैं, सोल बैटरी से डिस्चार्ज हो गई. तो क्या होगा, हमारी जो इसमें बुद्धि जो है हमारी भ्रष्ट हो जाती है, डिसीजन नहीं ले पाती, टीम हमारी नेगेटिव हो जाती है, हमारे मन में ऐसी, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है क्या होता है, हमारे मन में विचार भी नेगेटिव ही आते हैं, भावनाएं भी नेगेटिव आती हैं, एटीट्यूड भी नेगेटिव, हमारा दृष्टिकोण जीवन के प्रति नेगेटिव हो जाता है, मेमोरीज भी नेगेटिव हो जाती है, और हमारे चेहरे से क्या जाता है, नेगेटिव पर्सनैलिटी, चेहरे से क्या टपकता रहता है, हमेशा ही नेगेटिव बातें चेहरे से नजर आता है, नेगेटिव बातें. और इससे क्या होता है, हमारे अंदर ऐसे न्यूरोपेप्टाइड्स निकलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स निकल, तीनों बातें, न्यूरोपेप्टाइड्स, स्ट्रेस हार्मोन्स और सिंपैथेटिक डोमिनेंस, जो तीनों कंट्रोलिंग सिस्टम है ब्रेन के, वो तीनों के तीनों हाइपर एक्टिव हो गए. ठीक है, इससे क्या होता है, एनर्जी खूब जलने लगती है अंदर, जितनी एनर्जी थी ना, शक्ति ऊर्जा, वो जलना शुरू हो जाती है. और इससे क्या होता है, हमारे जब पैसा खूब खर्च हो रहा है तो क्या फील होगा, अंदर से आपकी जेब खाली होती जा रही है, क्या महसूस होगा, डिस ईज महसूस होगी, दुख महसूस होगा, खाली होता जा रहा हूं, खाली होता जा रहा हूं, खाली होता जा रहा हूं, तो क्या होगा, और लॉस ऑफ विल पावर, अंदर संकल्प शक्ति खत्म हो जाती है, विल पावर खत्म हो जाती है, और आत्मा से शक्तियों का बहना अंगों में बहना कम हो जाता है. ठीक है, डिक्रीज एनर्जी फ्लो और डिक्रीज एनर्जी ब्लॉकेज पैदा हो जाते हैं जगह जगह, स्पेशली टारगेट ऑर्गन में. फिर क्या होता है, और उस समय हमारे जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जीन्स तो हमारे बचपन से ही थे हमारे अंदर. एक आदमी को 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो या 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो, वो उसके ऊपर निर्भर करता है. वो जीन्स तो बचपन से मिले थे, किंतु अगर वो अपनी बैटरी को चार्ज रखे तो उसको डिले कर सकता है, उसको 80 साल में भी हार्ट अटैक पैदा कर सकता है अपने अंदर. जीन्स कुछ नहीं कहेंगे, वो 80 साल में अपना असर दिखाएंगे, किंतु चाहे तो वो 40 साल में भी अपने आप को हार्ट अटैक कर सकता है. वो जब वो जीन्स फिर एक्टिव हो जाते हैं. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कल तक वो शोर सामने वाला, बैंड बाजे वाला सामने दुकान थी, रोज बैंड बाजा बजाता था, किंतु आज जब मेरे अंदर हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो बैंड बाजा मेरे कान में चुभता रहता है, दिमाग में बजता रहता है, या पॉल्यूशन मुझे दिखाई देता है, समझ आता है, बच्चे शोर मचाते हैं, सब कुछ मुझे लगता है, मुझे हिट करता है, जब बैटरी चार्ज हो तो महसूस नहीं होता कुछ भी, है ना. तो ये जो है, ये तब उनका असर होने लगता है, और इससे क्या होता है, हमारी जो टारगेट ऑर्गन में डिसहार्मनी हो जाती है, और हमारे टारगेट ऑर्गन में डिजीज पैदा हो जाती है. जैसे इम्यूनिटी में अगर पैदा, इम्यूनिटी में डिजीज पैदा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, कैंसर हो जाता है, और या एड्स हो जाती है, या अगर हार्ट में हो जाए तो हार्ट डिजीज हो जाती है. इसका इलाज उल्टा, इसका इलाज क्या है, यहां सोल कॉन्शियस ले आओ तो क्या होगा, वर्टिकल कनेक्शन हो गया, यहां पर हॉरिजॉन्टल कनेक्शन पैदा हो जाए दूसरी आत्माओं से, यहां सिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, फुल प्रूफ सिक्योरिटी, यहां ह्यूमिलिटी पैदा हो जाएगी, यहां फुल ऑफ लव हो जाएंगे, यहां पूरा का पूरा आइसोलेशन डिसअपियर हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, टीम पॉजिटिव हो जाएगी, और इंटेलेक्ट क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, हर समय राइट डिसीजन लेगी, और पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो जाएगी. इसकी बजाय एंडोर्फिन निकलने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पेन किलर निकलने शुरू हो जाएंगे, और सिंपैथेटिक की बजाय पैरासिंपैथेटिक हो जाएगा, स्ट्रेस की बजाय हैप्पी हार्मोन शुरू हो जाएंगे, एंटी एजिंग हार्मोन शुरू हो जाएंगे, और एनर्जी पूल होने लगे, पूलिंग ऑफ एनर्जी होने शुरू हो जाएगी, एनर्जी फ्लो बढ़ जाएगा, जेनेटिक फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा. ठीक है, कितना मर्जी कोई ढोल बजाए, पॉल्यूशन होवे, बच्चे शोर मचाए, गाली देवे कोई कितना मर्जी, हम कभी नाराज नहीं होंगे, हम राजी रहेंगे. तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमारे अंदर हार्मनी टारगेट ऑर्गन में पैदा हो जाएगी, और ईज पैदा हो जाएगी टारगेट ऑर्गन, बीमारी खत्म हो जाएगी. ओम शांति. हाँ, यस यू आर वेरी राइट. ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोनल दिस थिंग, ये बड़ा इजीली बता सकते हैं. देखिए, जैसे मैं हार्ट डिजीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं,
लव का, एक मिनट इनका पहले आंसर कर लो, कंजेनाइटल प्रॉब्लम्स, कंजेनाइटल का, कंजेनाइटल का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, स्पेशली हार्ट का सोच लेता हूं जैसे आपको। सी लव का जैसे एक फ्लो है, एक आत्मा अपने साथ लव लेकर के आती है, सात गुण लेकर के आती है, पेट में आई पांचवें महीने में या जो भी चौथे महीने जब भी एंटर करती है, तो वो ऑर्गन आके तब डेवलप होने शुरू होते हैं। सपोज लव का कंटेंट वो इतना थोड़ा सा लेकर के आई कि वो जो है उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लायक ही नहीं है, है ना, तो क्या हुआ, कंजेनाइटल डिजीज, उसके जो 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 एट्रियल सेप्टम है या वेंट्रिकल सेप्टम वो पूरा बनेगा ही नहीं, ढंग से डेवलप ही नहीं होगा, तो वो कंजेनाइटल डिजीज के रूप में डेवलप हो जाएगा। अगर थोड़ा सा लव का कोटा, मतलब वो बचपन से पैदा होगा तो बच्चे के हार्ट शुरू से ही डिफेक्टिव होगा। अगर थोड़ा सा लव थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा लव मतलब 50% है 40% है, तो थोड़ी देर में उसके जो फेशिया है जैसे कस्प है वो डिफेक्टिव, उनपे रूमेटिक हार्ट डिजीज का अटैक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, रूमेटिक हार्ट डिजीज हो जाएगी। सपोज थोड़ा सा और ज्यादा लव है, 70% लव है आत्मा में, इतना कोटा लेकर के आएगा तो 40-50 साल ठीक चलेगा, फिर आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाएंगे। दैट वे ऐसे न्यूरोलॉजिकल में है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक डिफेक्ट्स हैं, मतलब उसका अलग अलग कोटा परसेंटेज वाइज लेके आती है, वही हमारे जीन्स एक्चुअली चेंज करते हैं। लव जो एक्चुअली लव जो भी जितनी क्रिटिकल लेवल से एक थ्रेशोल्ड से कम होता है तो उससे हमारे जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं। जीन्स भी क्या है, बेसिकली नथिंग बट जब एक उस गुण का कोटा कम होता है, एक थ्रेशोल्ड से कम होता है, तो जीन्स हमारे मॉडिफाई हो जाते हैं। तो जीन्स भी बेसिकली नथिंग बट इससे इफेक्ट ऑफ दीज सेवन क्वालिटीज ऑन दी न्यूक्लिक एसिड्स और वट एवर न्यूक्लियस क्रोमेटिन ऑफ द सेल्स। इस तरह से हाँ जी, एक्सेप्टेड हार्श वर्ड, अगर हम वो हार्श हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना हार्श वर्ड्स को, क्योंकि मेरा एटीट्यूड है ना उस हार्श वर्ड्स को एक्सेप्ट करने का। अगर मेरे अंदर लव इतना ज्यादा है तो मैं हार्श वर्ड, मुझे हार्श वर्ड लगेंगे नहीं, शॉक ऑब्जर्वर अंदर लगे हुए। ऑप्शन,
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता फॉर वेरी ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशन। टोटल स्पिरिचुअल और मेडिकल नॉलेज को ब्लाइंड करके जो दिया, थोड़ा मेरे को लगता है कि बहनों को जो डिफिकल्ट है वो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, जो नॉन मेडिकल टीचर्स बहने हैं उनको हम।
तो किस तरह की प्योरिटी की डिफरेंट डिफरेंट चीजें डिफरेंट डिफरेंट डिजीज पैदा कर सकती हैं, स्किन की या इम्यून सिस्टम की, वो आगे हम डेवलप कर रहे हैं अभी। ऐसे ही ब्रेन की बीमारी कौन कौन सी, बीमारी कौन कौन सी तरह के नॉलेज की लैक ऑफ नॉलेज से हो सकती है, कितने परसेंट नॉलेज से कितने इसके, आगे उसको डेवलप कर रहे हैं। तो अभी वो डेवलपिंग फेज में है, वो बाद में आपको बताएंगे कैसे कैसे कितना परसेंट कितना कैसे 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 हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन, प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, मतलब उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। वो आठ लेयर का आप ऑरा बना सकते हैं अपने आसपास ना, इतना सात लेयर का, आठ लेयर का, जो इसके आपको हर चीज से लड़ेगा भी और हर चीज से आपको बचाएगा भी, ठीक है, पॉल्यूशन से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाएगा।
ओम शांति।
थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गुप्ता।
हो जाएगा खुशियों की सुंदर।